आज है मंगलवार तारीख 16 जून। दिन भर के साथ में निखिल रंजन। विवादों में घिरी सुषमा स्वराज पर कांग्रेस का हमला तेज, लेकिन बीजेपी ने जताया भरोसा।
उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोनाफाइड। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत, इसमें किसी को संदेह ना रहे।
उत्तराखंड में 2 साल पहले आज ही आसमान से आई थी मुसीबत, क्या कुछ बदला है गुजरे 2 सालों में?
ये नदी है ना आपका, ये बीच नदी पूरा मार्केट था यहाँ पे, पहले बीच नदी में नदी आपकी उधर साइड में थी।
बिहार में बीजेपी किसके नाम पर लड़ेगी चुनाव? विरोधियों का दावा, बीजेपी के पास नहीं है नेता। यमन में अलकायदा के मुखिया की मौत, चरमपंथी संगठन ने घोषित किया उत्तराधिकारी का नाम। होंगी खबरें और भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा ने जो किया अच्छी नीयत से किया। उन्होंने इसे सरकार के मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने भारत में वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच का सामना कर रहे ललित मोदी को यात्रा के लिए दस्तावेज दिलाने में मदद की। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री से इस मामले में बयान की मांग कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस 40 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की जगह एडवांस तकनीक वाले हथियार अपने शस्त्रागार में शामिल करने जा रहा है। इनकी तैनाती के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। पूर्वी यूरोप के देशों में नाटो के सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने के अमेरिका के प्रस्ताव के बाद रूस की ये घोषणा महत्वपूर्ण है। इस मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा,
в текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых.
इस साल हम परमाणु हथियारों में नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें शामिल करेंगे। ये मिसाइलें अत्याधुनिक एंटी मिसाइल रक्षा तंत्र को तोड़ने के काबिल होंगी। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की कथित हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। अगली सुनवाई 24 जून को होगी। 1 जून को पत्रकार जगेंद्र सिंह को बुरी तरह झुलसी हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें यूपी सरकार के एक मंत्री भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सरकार ने देश में काम कर रही सभी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं को 3 महीने के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्थाओं के कामकाज को सरल बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ सेव द चिल्ड्रन के दफ्तर को बंद करने का फैसला लिया था और उसे वापस भी ले लिया था। सेव द चिल्ड्रन पर पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका की मदद करने का आरोप लगाया जाता रहा है। अमेरिका नाइजीरिया के इस्लामिक संगठन बोको हराम से लड़ने वाले क्षेत्रीय सुरक्षा बल को $50 लाख की मदद देगा। अफ्रीकी मामलों की उपमंत्री लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि बोको हराम सिर्फ नाइजीरिया की समस्या नहीं है। वहीं चाड की राजधानी में जमीना में कल बोको हराम के 2 आत्मघाती हमलों में करीब 23 लोगों के मारे जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं निखिल रंजन। आज 16 जून है। 2 साल पहले यही वो समय है जब उत्तराखंड ने भारी तबाही देखी और पूरा देश सिहर उठा। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ है। अब वहां हालात कैसे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। लेकिन फिलहाल बात उस विवाद की जिसने केंद्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली मदद पर उठे विवादों में बयानों और बचावों के साथ ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी तेज हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने आज अपने हमलों की धार और मजबूत कर दी। कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सिर्फ सुषमा स्वराज ही नहीं, पार्टी में उच्च स्तर पर यह सहमति थी कि ललित मोदी की मदद की जाए। पूरा ब्यौरा सुनिए जुबैर अहमद से।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों को लेकर मचे हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और ये कि पार्टी और सरकार उनके साथ हैं।
उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत है, इसमें किसी को संदेह ना रहे।
वित्त मंत्री ने सुषमा स्वराज के बचाव में कहा कि पार्टी के सभी मंत्री फैसले लेने के लिए सक्षम हैं। इससे पहले लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया था कि अरुण जेटली इस मामले में खामोश क्यों हैं, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुषमा स्वराज का बचाव किया।
देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार के हमारे मंत्री सब सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय लेते हैं हम सब उसके लिए सामूहिक जिम्मेवार हैं।
मगर कांग्रेस ने अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से फिर सवाल किया कि ललित मोदी की मदद क्यों की गई थी।
आई हैव क्वेश्चंस टू आस्क When there was no specific query from the authorities of United Kingdom to the Ministry.
मुझे एक सवाल पूछना है कि जब ब्रिटेन की सरकार की तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, तो विदेश मंत्री ने क्यों ब्रिटेन से संपर्क किया और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ कई इल्जाम लगे हैं। ये थे आनंद शर्मा के शब्द। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा सवाल खड़ा किया और पूछा कि वो इस मामले में अब तक खामोश क्यों है। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच की मांग करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ललित मोदी इन दिनों लंदन में हैं। सुषमा स्वराज पर इस बात के आरोप हैं कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए कथित सिफारिश की। हालांकि खुद सुषमा स्वराज ने सफाई में ट्वीट किया था कि ललित मोदी को कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी का इलाज कराने पुर्तगाल जाना था और वो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने मानवीय आधार पर उनकी मदद की थी। भारत से जाकर ब्रिटेन में शरण लेने से पहले ललित मोदी को भारतीय जनता पार्टी का करीबी समझा जाता था। भारत सरकार ने ललित मोदी पर वित्तीय गड़बड़ के आरोप लगाए हैं। सुनवाई के लिए ललित मोदी ब्रिटेन से भारत अब तक नहीं लौटे हैं। यूपीए सरकार ने 2010 में ललित मोदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, लेकिन अगस्त 2014 में अदालत ने उनका पासपोर्ट लौटा दिया था। मगर मोदी सरकार ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये विदेश मंत्रालय का काम था, जबकि विदेश मंत्रालय के अनुसार इसे वित्त मंत्रालय को चैलेंज करना चाहिए था। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ये मामला सामने आने के बाद से बीजेपी ने ये कोशिश की है कि पार्टी पूरी तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ दिखे। हालांकि इसके बावजूद कुछ हलकों में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पार्टी में इस मुद्दे पर मतभेद है। पार्टी के नेता कीर्ति आज़ाद ने इस बारे में कुछ ट्वीट भी किए जिनसे इन आशंकाओं को मजबूती मिली। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद से मैंने पूछा कि सुषमा स्वराज के साथ पार्टी का रुख कैसा है।
देखिए, पार्टी में अंदर खाने चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कतई कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह सुषमा स्वराज के साथ खड़ा हुआ है। कल अरुण जेटली पर प्रकारांतर से हमला हुआ था कि जो सुषमा स्वराज के खिलाफ विवाद है, जो इसमें फंसी हुई है सुषमा स्वराज, उसमें कोई आस्तीन का सांप ही है।
जो इस तरह की बातें हो रही हैं, आपने भी कहा कि अंदर खाने चाहे जो कुछ भी हो, तो ये जो अंदर खाने हैं वो क्या है?
पिछली सरकार के मंत्री भी और इस सरकार के मंत्री भी कुछ ना किसी न किसी रूप में उनका हित था आईपीएल में, तो वो स्कोर सेट किया जा रहा है और उसकी छाया इस सरकार की मंत्री सुषमा स्वराज पर पड़ी है, जिन्होंने आउट ऑफ वे जाकर सुषमा अपने जो ललित मोदी, उनको ब्रिटेन का ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है, वो टेम्परेरी पासपोर्ट कह लीजिए, वो दिलवाने में मदद की। और उससे ये तमाम चीजें, अब ये तो एक चीज एक सामने आई है, लेकिन अगर सुषमा स्वराज को इतना कॉर्नर कर दिया जाए कि वो इस्तीफा देने को मजबूर हो, तो वो आगे चलकर बहुत सारी बातें ऐसी कह सकती हैं जिससे सरकार के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। अभी सरकार ने पहला साल मनाया है अपने अस्तित्व का, और अभी उसको 4 साल और बिताने हैं। सरकार की जो कीर्ति गठन के समय दिखाई दे रही थी, वो कीर्ति कहीं नहीं है, बदनामी उसको मिल रही है, क्योंकि उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो इसकी प्रशंसा मिलनी चाहिए।
सरकार ने ये कोशिश तो की है कि वो सुषमा स्वराज के साथ पूरी तरह से साथ खड़े दिख सके, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हुई है? दूसरी बात ये कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सुषमा स्वराज के साथ इस तरह से सरकार के साथ होने से खुश ना हो बीजेपी में?
बीजेपी में भी एक तबका ऐसा है जो जिसने जो कहते हैं नाम ना छापने की शर्त पर जो खबरें लिखी जाती हैं, जो खबरें मिलती हैं, उससे पता चलता है बीजेपी में भी अंदर खाने गुटबाजी है, जरूर निश्चित रूप से गुटबाजी है, लेकिन इस समय इस गुटबाजी पर, इन तमाम दरारों पर एक तरह का ढक्कन लगाने का काम, एक तरह का पर्दा डालने का काम ये सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो कर रहे हैं। और रणनीतिकार जब मैं कहता हूं तो ये दोनों प्रमुख रणनीतिकार हैं, तीसरे एक अमित शाह और हैं जो पहले ही इनके बारे में कह चुके हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और सम सुषमा स्वराज के साथ हैं।
उन लोगों की क्या शिकायत हो सकती है, वो लोग किस बात से नाखुश हो सकते हैं पार्टी में
इस समय? निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दो विरोधी ग्रुपों में हैं, और सुषमा स्वराज तो वो नेता रही हैं जिन्हें पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, और अगर मान लिए मोदी को घोषित ना किया जाता नाम, और मोदी के घोषित होने के बाद भी, नाम घोषित होने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 180 से कम सीटें मिलती तो गठबंधन की सरकार बननी होती जो बिल्कुल दूसरी पार्टियों पर डिपेंड होती। अब भी गठबंधन की सरकार है लेकिन वो डिपेंड नहीं है, तब सुषमा स्वराज ही देश की प्रधानमंत्री बनती, क्योंकि नरेंद्र मोदी से नाराज होने वाले लोग ज्यादा हैं।
वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद बता रहे थे बीजेपी के अंदरूनी राजनीति के बारे में। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या मामले में कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी से बात की।
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार पहले पूरे मामले में जवाब दे, आखिर उसने अब तक क्या किया। साथ ही रिटर्न में भी मांगा है कि आपने जो अब तक तफ्तीश की है, जो विवेचना की है, घटना वाले दिन से लेके अब तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है सारी की सारी लेके 24 जून को उपलब्ध होइए। राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता खड़े, उन्होंने कहा कि हमारी जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं, इतने कहने से नहीं काम चलेगा, आपको पूरे दस्तावेज के साथ 24 जून को अदालत में उपस्थित होइए और जांच की पूरी आख्या सहित पूरे मामले से अवगत कराइए। हालांकि यह नौबत तब आई है जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी पे अंगुली उठी और सामाजिक संगठनों को जनहित याचिका का शरण लेनी पड़ी।
राघवेंद्र जी, किन संगठनों की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी? किसी एक याचिका पे सुनवाई हुई या फिर कई याचिकाओं पे सुनवाई की थी हाईकोर्ट ने?
देखिए, नूतन ठाकुर समेत कई याचिकाएं इसमें पड़ी थी। नूतन ठाकुर एक्टिविस्ट है, उन्होंने दाखिल की थी, लेकिन कई याचिकाएं थी, उनको क्लब कर लिया हाईकोर्ट ने और एक साथ सबकी सुनवाई करते हुए कहा कि जागरण स्वरूप 1 मई को उनके साथ घटना हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की ढिलाई, शाहजहांपुर पुलिस की ढिलाई के चलते उसकी 1 हफ्ते बाद मौत हो गई, उसके बाद इसमें मंत्री का नाम आया और एक कोतवाल का भी नाम आया है और इसमें जांच ठीक से की नहीं जा रही है, इसी सब आरोपों को लेके याचिका दायर की गई थी, जिस पे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जिला पुलिस जो जांच कर रही है उसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए या नहीं।
इस मामले पे सरकार भी बड़ी एक तरह से कह लीजिए कि एक अड़ियल रुख अपनाए हुए थी। हाईकोर्ट ने आज जो कुछ इनसे रिपोर्ट पेश करने को कहा, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से किसी का कोई बयान आया है क्या?
जी नहीं, राज्य सरकार तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम हाईकोर्ट को 24 जून को कोर्ट में अवगत कराएंगे कि मैंने अब तक क्या किया।
लखनऊ से स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी बता रहे थे कि पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है और सरकार 24 जून को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने। बिहार में चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज बीजेपी के बिहार प्रभारी अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी में चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या इस बयान का ये मतलब है कि बिहार में इस वक्त बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में या फिर पार्टी के चुनाव अभियान के चेहरे के रूप में पेश कर सके? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ऐसा नहीं मानते। उन्होंने कहा,
उन्होंने बात कहते कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सर्वोच्च नेता हैं, तो हर राज्य का चुनाव जहां भी लड़ा गया या लड़ा जाता है तो एक बड़े कैंपेनर होते हैं, हर चीज़ में उनका चित्र होता है, फोटो होता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यानी राज्य का नेतृत्व चुनाव का नरेंद्र मोदी करेंगे ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। इसलिए अगर किसी को कोई गलतफहमी हो तो मैं उनके हवाले से उसका खंडन कर रहा हूँ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने इस बारे में स्थिति साफ करने की कोशिश की, लेकिन विरोधी उनके रुख से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी के पास बिहार में नेताओं की कमी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी,
भारतीय जनता पार्टी में अनिश्चितता की स्थिति है, नीतीश कुमार और गठबंधन से लड़ने के लिए इनके मुकाबले का कोई नेता गठबंधन के पास नहीं, इसलिए कि पिछले 10 साल का जो शासनकाल है उसकी जो उपलब्धियां हैं वो नीतीश कुमार तो चर्चित भी कर रहे हैं और बीजेपी तो उपलब्धियों को भी शर्मिंदा होने लगी। बीजेपी को जो 8-9 साल का सुशासन है वो चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है उसको उसकी भी क्रेडिट लेने संकोच हो रहा है, तो बीजेपी के पास फिर क्या बचा है।
और इस बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पटना से मनीष शांडिल्य। मनीष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर आजकल, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं बिहार में बीजेपी के नेतृत्व को लेकर के, वहाँ क्या कहना है बाकी दूसरे नेताओं का?
बिहार भाजपा की जो स्थिति है उसमें अभी लगभग 0.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो कि जो चुनाव होंगे आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के, उसमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के दावेदार हैं। आज अनंत कुमार जो बिहार चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार आए थे और जब उन्होंने अपना बयान दिया जिसे इस रूप में सामने रखा गया कि बिहार का जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उस वक्त सुशील मोदी जिन्होंने बाद में इसका खंडन किया ठीक उनके पीछे खड़े थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, दूसरा है कि उनमें सबसे जो मजबूत दावेदारी मानी जाती है वो सुशील कुमार मोदी जी की है, लेकिन भाजपा के सामने चुनौती ये है जैसा कि विश्लेषक और जानकार बताते हैं कि ये जो अलग अलग उम्मीदवार हैं ये अलग अलग सामाजिक समूहों से, जातीय समूहों से आते हैं, तो उसके सामने ये चुनौती है, एक सुपीस की स्थिति है कि अगर वो किसी एक को सामने करती है तो जो उसके या तो परंपरागत समर्थक रहे हैं या जिनको वो अब ज्यादा संख्या में जोड़ना चाहती है वो कहीं नाराज ना हो जाए एक नेता को आगे करने से।
ऐसी स्थिति में बीजेपी और किसी बीजेपी के जो नेता हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, उनके अंदर क्या किस तरह की भावना फैल रही है, मतलब क्या उनको लग रहा है कि उनको साइड किया जा रहा है?
जी देखिए, अब तो चुनाव नजदीक आ गए तो ज्यादा खुल के अभी जो स्थिति है ज्यादा खुल के बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो राज्य स्तरीय कुछ नेता थे उनसे मैंने जब बात की थी तो वो खुल के दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन भाजपा को जानने वाले ये कहते हैं, ये बताते हैं कि अंततः जो पार्टी का फैसला होगा, जो संसदीय बोर्ड जिसको नियुक्त करेगी या ये तय करेगी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा जाए तो उसको सभी नेता मानेंगे, और जो भी अभी अपने दावे कर रहे हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें, परोक्ष रूप से करें, अपने समर्थकों के जरिए करें, वो सभी भाजपा के पुराने नेता हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अगर किसी एक को इनमें से बनाया भी जाता है तो बाकी नाराज होकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे।
बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। पटना से मनीष शांडिल्य बता रहे थे बिहार में बीजेपी के नेतृत्व पर जो बवाल मचा हुआ है और पार्टी अपना चेहरा तय नहीं कर पा रही है इसे। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर और आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज रवाना हो गया। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस जत्थे के यात्रियों को शुभकामनाएं दी। पहली बार कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला दर्रे के रास्ते से यात्री जा रहे हैं और विदेश मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अब गाड़ी से सीधे मंदिर तक जाया जा सकेगा।
ये रास्ता खुलने के बाद मैं जैसे देख रही हूँ हमारे यहाँ बड़ी उम्र की बहनें भी बैठी, महिलाएं आई, उनके मन की कितनी बड़ी इच्छा शिव पूरी कर रहे हैं। शारीरिक शक्यता बाधा बन जाती थी, आज वो बाधा दूर हो रही है और पूरे मोटरेबल रास्ते से आप लोग जाएंगे। रास्ते में कहीं आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। अगर वहां जाकर आपके मन में इच्छा हो परिक्रमा करने की, तो वो 3 किलोमीटर का रास्ता है। आप में से वो लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए वो परिक्रमा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना बहुत आराम से मोटर से उतरकर आप भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं, ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं।
यात्रियों का जत्था तो रवाना हो गया, लेकिन 2 साल पहले उत्तराखंड में इसी यात्रा के दौरान आई भारी तबाही का मंजर लोगों के जहन में अभी ताजा है। आसमान से आई मुसीबत में जो कुछ तबाह हुआ, उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी है जो अब तक ठीक नहीं हुआ है। सड़कों, पुलों और दूसरे रास्तों की भी हालत बहुत ख़राब है। इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने कई बार इस इलाके का दौरा किया है, ख़ासतौर से इस तबाही के बाद। नितिन, ये बताइए कि आप अगर याद करें उस अपनी पिछली यात्रा को, तो क्या जहन में तस्वीर उभरती है आपके?
देखिए, जब 2013 में ये वाकया हुआ था, तो उस वक्त वहां पर जो तस्वीर थी वो वाकई में बहुत भयावह थी, और उस वक्त ये लग रहा था कि इस पूरे इलाके को रिबिल्ड करने में, दोबारा पटरी पर लाने में सालों लग जाएंगे। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद पिछले साल आज ही के दिन 16 जून, आज की तारीख के दिन, मैं दोपहर में 4:30 बजे तक केदारनाथ में था, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि उस दिन एक साल बाद केदारनाथ में कुछ भी बदला था नहीं। मतलब केदारनाथ में अभी भी पिछले साल तक 8 से 10 फीट का मलबा था। मंदिर में तमाम पुजारी खाली बैठे थे। हालांकि सरकार ने कहा था कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें इक्का दुक्का श्रद्धालु ही मिले थे वहाँ। पूरा प्रांगण खाली सा था, और मतलब समझिए कि जो वहां पर पंडित और पंडित थे वो ये कह रहे थे कि आप आइए, आप बैठिए, आपकी पूजा करा देते हैं। तो इस तरह का मंजर था पिछले साल तक। और अगर अगर हम जमीनी हकीकत को देखें, तो जिस तरह से सड़कें बर्बाद हुई थी रुद्रप्रयाग से लेके ठीक ऊपर तक जाने में, उखी मठ तक जाने में, उखी मठ में जिक्र करूं तो समझिए कि उखी मठ जिला जो केदारनाथ से ठीक सटा हुआ है, वहां पर 2,800 लोगों के गाँव में 300 विधवाएं थी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मंजर था, और एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा है, और उसमें बहुत धैर्य की जरूरत है और बहुत दृढ़ता के साथ करने की जरूरत है सरकार को।
देहरादून से शिव जोशी भी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए कि वहां पर इस वक्त जो हालात हैं वो कितने सुधरे हैं पिछले साल की तुलना में?
निखिल जी, जो हालात हैं पिछले साल के तुलना में कहें, या कुल मिलाकर 2 साल भी कहें, तो हालात कुल मिलाकर जस के तरसी हैं एक तरह से। अगर हम देखें, अगर आप चारधाम यात्रा को अगर हम देखेंगे, तो चारधाम यात्रा के लिहाज से तो सरकार ने चीजें चमका दी हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वहां पर, सड़कें, पुल, स्कूल, मकान, खेत, उन सबकी हालत को देखें, तो वो जो बर्बाद थे वो बर्बाद ही हैं, और उनके पुनर्वास को लेकर या उनको नई शक्ल को देने को लेकर या उनके पुनर्निर्माण को लेकर 2 साल में अभी तक कोई काम एज सच नहीं हो पाया है। चाहे पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये 4 जिले, बागेश्वर को भी नुकसान पहुंचा था, तो 5 जिलों में अगर हम देखें तो जो स्कूल हैं, जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़ी संख्या में ये क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो 1/3 स्कूल के भवन अभी भी अधूरे हैं, पढ़ाई अलग जगहों पर चल रही है, स्वास्थ्य केंद्र जो है किराए के मकानों पर चल रहे हैं, कमरों पर चल रहे हैं, और पुलों की हालत जो बह गए थे पुल उस दौरान, वो पुल अभी तक नहीं बन सके। सड़कों का बेशक काम हुआ है, अब वो भी सिर्फ चारधाम यात्रा रूट की सड़कें, लेकिन उनका भी पक्का काम अभी होना बाकी है।
तो इस बार शिव जी, अब जो यात्री जा रहे हैं उनके सामने किस तरह की चुनौती होगी, क्या उनके लिए पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं?
देखिए, जहां तक यात्रियों की बात है, यात्रियों के लिए चूंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है जो सीमा से लगा हुआ है, तो यात्रियों के लिहाज से अभी केदारनाथ धाम की यात्रा जो चल रही है अभी, और चारों धामों की यात्रा चल रही है, यात्रियों के लिहाज से अभी जो सड़क किनारे की स्थितियां हैं, होटल हैं, अस्पताल हैं, और क्या पुलिस बल तैनात हैं, उन सब के लिहाज से स्थितियां सुधरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। केदारनाथ धाम का रास्ता भी सुधरा है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी जिसका हेडक्वार्टर है, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम वहां पर किया, केदारनाथ धाम को फिर से उसका पुनर्निर्माण करने में बड़ा योगदान उनका है। तो यात्रा के लिहाज से तो चीजें मुफीद हुई हैं। ये बात अलग है कि प्राकृतिक विपदा कब किस रूप में टूट पड़े ये अलग बात है, लेकिन वो तो उसको तो उन्होंने सुरक्षित कर दिया। लेकिन जहां तक जो इलाकाई लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका जो दर्द है और उनका जो आपदा का जो दंश है, वो दस जस का तस बना हुआ है निखिल जी, उस पर अभी कोई सुधार नहीं, उस पर कोई मरहम नहीं लग पाया है अभी।
जी नितिन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विदेश मंत्री कह रही थी कि इस बार अब बहुत आसानी है और जो है जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं वो भी सीधे मंदिर तक जा सकेंगे। नाथुला दर्रा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अब रास्ता खुल गया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की?
देखिए निखिल, ये जो है ना सरकार ये दावा पिछले साल से कर रही है कि हमने जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा से लेके तमाम ऐसे पासेज हैं, दर्रे हैं जिनको खोल दिया है, जिनसे सैलानी और जिनसे तीर्थ यात्री जा सकेंगे। लेकिन मुझे मेरी दिक्कत अभी भी जो बुनियादी है वो दिक्कत ये है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि जो ये पूरा इलाका है जो इस भीषण बाढ़ और आपदा का शिकार हुआ था 2013 में केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, ये दरअसल एक टूरिस्ट इलाका है, चाहे वो धर्म के नाम पर टूरिज्म हो या खूबसूरती और पहाड़ों की खूबसूरती और चोटियां देखने के नाम पर टूरिज्म हो। मुझे लगता है कि ये सीखने की जरूरत है कि नेपाल में अगर मिसाल के तौर पर मैं लूं, 1.5 महीना हुआ है एक आपदा है, उसके बाद सरकार और तमाम समाज सेवी संस्थाएं सिर्फ इस बात पर जोर दे रही है कि हम दोबारा से जल्द बहाल करके दिखाएंगे, क्योंकि पर्यटन जुड़ा है अर्थव्यवस्था से। वो चीज मुझे उत्तराखंड में अभी तक 2 साल से ज्यादा हो गए हैं देखने को नहीं मिली।
बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव और शिव जोशी आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अलकायदा की यमन शाखा ने उसके एक नेता की अमरीकी हवाई कार्रवाई में मारे जाने की पुष्टि की है। अलकायदा ने एक ऑनलाइन वीडियो जारी कर कहा है कि उनके नेता नासिर अल वुहैशी ड्रोन हमले में मारे गए हैं। नासिर अल वुहैशी एक ज़माने में अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के करीबी माने जाते थे। पूरा ब्यौरा सुनिए सुशीला सिंह से।
यमन में मौजूद अलकायदा की शाखा ने एक ऑनलाइन वीडियो जारी कर नासिर अल वुहैशी समेत दक्षिणी पोत मुकाला में 2 अन्य सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि की है। वुहैशी को अलकायदा के दूसरी कमान के नेता के तौर पर देखा जाता था और वे ओसामा बिन लादेन के निजी सचिव भी रह चुके थे। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अलकायदा की सबसे सक्रिय शाखा को बनाया था। इस वीडियो में अलकायदा के प्रवक्ता का नाम नहीं दिया गया है और वे इस वीडियो में वुहैशी के उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर रहे हैं।
وعلى اثر هذا الحدث وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وانصار المخلوع في اكثر من 11 جبهه في مختلف انحاء
ناصر الوهيشي की मौत हुती के खिलाफ जारी हमारी लड़ाई और राष्ट्रपति को अपदस्त करने वाले लोगों के समर्थन के अलावा यमन में 11 मोर्चों पर चल रही लड़ाई के बावजूद हमारे लिए सलाहकार परिषद की बड़ी बैठक संभव हो पाई और हमने वुहैशी की जगह अपना उत्तराधिकारी आदरणीय शेख अबू हुरैरा कासिम अल राइमी को चुना है। भगवान उनकी रक्षा करें।
यमन में अलकायदा के दोबारा उठ खड़े होने के बाद उसने अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमलों की मदद से क्षेत्र और इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ सऊदी नेतृत्व में हो रही हवाई कार्रवाई हूती विद्रोहियों पर निशाना लगा रही है, लेकिन हाल के महीनों में अरब उपद्वीप में मौजूद अलकायदा के नेताओं की मौत ने इन अफवाहों को बल दिया है कि खुफिया एजेंसियां सफलतापूर्वक उन्हें निशाना बना रही हैं। यमन के न्यूज समूह अल मजदर ऑनलाइन ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि वुहैशी शुक्रवार को हैदराबाद प्रांत में हुए हमले में मारे गए थे। इस वीडियो में अलकायदा के एक वरिष्ठ सदस्य खालिद बतारफी कह रहे हैं कि उन्हें दुख है कि वुहैशी की अमरीकी हमले में हुई कार्रवाई में मौत हो गई है और साथ ही इस हमले में 2 मुजाहिदीन मारे गए हैं। इससे पहले पेंटागन कह चुका है कि इस घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि चरमपंथियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने वाले संस्थान साइट इंटेलिजेंस ग्रुप ने कहा था कि वो साल 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा पर बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने वुहैशी को पकड़ कर लाने वाले को $1 करोड़ की राशि देने की भी घोषणा की थी। इस समूह का कहना था कि वुहैशी नए सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण में मदद और हमले की योजना बनाने और हमले करवाने के लिए जिम्मेदार थे। वे यमन के नागरिक थे और 90 के दशक में उन्होंने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लिया था और तोरा बोरा में 2001 में लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन फिर वे बचकर ईरान भागने में सफल रहे थे।
रिपोर्ट सुना रही थी सुशीला सिंह। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सुषमा स्वराज ने जो किया अच्छी नीयत से किया, उन्होंने इसे सरकार के मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस इस साल 40 से ज्यादा अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें अपने परमाणु शस्त्रागार में शामिल करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की कथित हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरता कांडपाल। आज के दिन भर में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात रात 9:30 बजे। नमस्कार।